वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, इसके क्या मानी है कि जाहिदहुम, इसका रूट क्या है? जीम हा दाल, और जीम हा दाल जो है इसके मानी है कोशिश करना। और कैसे कोशिश करना, यानी इंतहाई कोशिश के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जिहाद का लुगवी मानी है किसी मकसद के हुसूल के लिए भरपूर कोशिश करना, इंतहाई कोशिश करना। और अगर आप इस पर मजीद और इस बात पर गौर करें कि जिहाद जो है वो कैसे किया जाता है, तो आप ये बात भी जो है वो आपको अच्छी तरह याद होगी कि जाहिद हुम, यहाँ पे ऑर्डर का सीगा है ये, कि जिहाद करें उनसे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है और आपके की निस्बत से तमाम मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप जिहाद कीजिए हुम उनसे, यानी काफिरों से, मुशरिकों से, मुनाफिकों से, जो कुफ्र है दुनिया में फैला हुआ उनसे जिहाद करना है। यही इसको लेकर, इसको लेकर कुरान को लेकर, कुरान के जरिए जिहाद करना है, बगैर कुरान के नहीं। जिहादन कबीरा, और जिहाद कैसे करना है? बड़ा जिहाद करना है। तो वैसे ही जिहाद के लफ्ज में भी जो है वो भरपूर कोशिश शामिल है, और साथ में जिहादे कबीर जो आ गया तो ये मजीद ताकीद इसके अंदर पाई जाती है। देखिए ना, जिहादन, जिहाद कोशिश, इंतहाई कोशिश, भरपूर कोशिश, फिर कबीरा। कबीर का लफ्ज जब आप सुनती हैं तो आपके जहन में क्या तसव्वुर पैदा होता है? कबीर से बहुत बड़ा, बड़े बड़ी। अगर आप किसी चीज के बारे में कहें कि वो बहुत बड़ी है तो बड़ी में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे बहुत बड़ी चीज है तो गोया कि वुसत, वसी वुसत आती है, और फैलाव का आ जाता है, और क्या आता है इसमें? हुजम। यानी गोया के बड़ाई कैफियत में भी हो और अमलन भी उसकी बढ़ाई बढ़ाई हो। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान किया, मतवज्जो किया कि कुरान के जरिए से आपने जो है वो जिहादे कबीर करना है। तो जिहादन कबीरा कहना इस बात की तरफ इशारा है कि जिहाद जो है बड़ी मेहनत का काम है, ये बहुत बड़ा काम है, इसको पूरी वुसत के साथ जो है वो करना है। इसमें जिहादे कबीर के अंदर फिर तीन मानी पैदा हो जाते हैं। एक तो ये है कि इंतहाई कोशिश, ऐसी सही और जान फिशानी कि जिसमें इंसान कोई कसर उठा ना रखे। जैसे होता है ना कि ये मेरी इंतहाई कोशिश है, आई डिड माई बेस्ट, कि जो मैं कर सकती थी वो मैंने बेहतरीन किया। तो नंबर एक, इंतहाई कोशिश जिहादे कबीर को कहते हैं। नंबर दो, वो कोशिश जो है वो बड़े पैमाने पर हो, इतने बड़े पैमाने पर, ऐसे बड़े पैमाने पर कि तमाम जराए इसमें लाकर डाल दिए जाएं, है ना? अब तमाम जराए जो उसमें लाकर डाल दिए जाएं, इससे मुराद क्या है कि जो कुछ भी आप कर सकते हैं, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, आप जो हैं वो किसी को जो है वो बुला रहे हैं, किसी को फोन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी को जो है वो किसी और जरिए से मैसेज भेज रहे हैं, आप दावत आपने इस मकसद के लिए रख ली है, कुछ भी आप कर रहे हैं, यानी गोया कि तमाम जराए जो भी आपके पास जराए हो सकते हैं। मसलन आपको पाकिस्तान जाना है तो आप सोचते हैं कि मुझे जाना ही है। जैसे एक औरत पिछले दिनों बता रही थी कि उसने टिकट जमा किया मुख्तलिफ तरीके से, शोहर पैसे नहीं देता था तो उसने खुद उतने दिन जॉब की और पैसे जमा किए ताकि वो पाकिस्तान जा सके। गोया के आपने, हालांकि वैसे रूटीन में आप जॉब नहीं कर रहे, तो आपने अपना एक काम करने के लिए ये जरिया भी इस्तेमाल कर लिया। तो इंतहाई जराए। तीसरे इसके मानी है कि ये जो कोशिश है ये जामे होनी चाहिए, कोशिश ऐसी जामे होनी चाहिए कि कोई पहलू और मुकाबले का कोई महाज जो है वो छोड़ा ना जाए। जिस जिस महाज पर कुफर की ताकतें काम कर रही हैं, उस महाज पर आप भी अपनी ताकत जो है वो लगा दें, जिस जिस पहलू से वो कुफर की सरबुलंदी के लिए कोशा हैं, उस पहलू से आप भी जो है वो हक की जरूरत जो है वो उसको पूरा करें। तो जामे जिहाद जो है इसमें फिर आपकी जबान आ जाती है, जैसे तकरीरी सलाहियत पैदा करना, जैसे आप में बहुत से तालिबे इल्म हैं जो क्लास के शुरू में बोलते नहीं थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। अब कल परसों एक स्टूडेंट आपकी आपकी क्लास वाला ये बता रही थी कि किसी पार्टी में, किसी दावत में उसने किसी के बहुत से सवालों का जवाब दिया और वो औरत उसको मुतमिन नजर आ रही थी, हालांकि पहले आप कोई बात करता था आप बात नहीं कर पाते थे, है ना। तो क्या किया कि आपने जो है वो अपनी जबान से जिहाद किया, इसी तरह फिर कलम से, तहरीर से। बाद लोगों के अंदर आपके अंदर जो है वो लिखने की सलाहियत छुपी हुई है, क्योंकि लिखना आदत नहीं है ना आपकी। तो अब यह है कि आप इर्द गिर्द सोसाइटी के अंदर जो है वो देखें, जब कलम को का इस्तेमाल देख रहे हैं आप, देखें ना ये अखबारात और रसाइल कितने निकलते हैं, कितनी इसमें बेहुदा और बुरी चीजें हैं, तो आप भी अपनी तहरीर भेज सकती है ना। मसलन अभी पिछले दिनों जो है वो जो एक लड़की मर गई थी, तो इस्लाम के खिलाफ कितनी बातें आई थी कि शायद इस्लाम ही ऐसा कहता है कि बच्चियां जो हैं या लड़कियां जो हैं, औरत जो है उस पर जुल्म सितम किया जाए, हालांकि वो कत्ले खता था, कत्ले अमद नहीं था, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी से कत्ले खता हो सकता है ना। तो अब क्या है कि आप उस मौके पर आप बताती कि औरत को, लड़की को इस्लाम जो है वो क्या हकूक देता है, कैसे औरत को घर की मलका बना के रखता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बेटी जो है वो तो गोया के जिसने बेटियों को अच्छे से पाला, उसकी तरबियत की, तो गोया के उसको जन्नत की जमानत, उसकी खुशखबरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई, तो रहमत है बेटी। अब क्या बात पता चलती है, गोया के जिहाद कलम से भी करना है, जबान से भी करना है, गोया तहरीर से भी करना है और लिसान से भी करना है। फिर इसके अंदर जो है वो जान और माल का जिहाद दिया जाता है, आपकी जवानी है, आपका बुढ़ापा है, जैसे माशाल्लाह आपकी क्लास में जवान भी मौजूद हैं, कॉलेज स्कूल के लोग भी नजर आते हैं और आम घरेलू औरतें भी और फिर बूढ़े भी नजर आते हैं माशाल्लाह, और वो किसी से पीछे नहीं है। बर्फ के मौसम में और पूरी जब बाहर की जो ये सेंटर के बाहर की जगह जो है वो बर्फ से ढक जाती है, जैसे कि पहाड़ की चोटियां ढक जाएं, तो आपके कदमों के निशान जो हैं, आप जब चलते हैं आप आते हैं जवान भी और फिर बूढ़े भी, आपके कदमों के निशान जो है वो जिहाद इंतहाई कोशिश की गवाही देते हैं। गोया के यानी सफेद सफेद जो फर्श है उस पर आपके कदमों की निशान अजमत की गवाही देते हैं, आपके किरदार की बुलंदी की गवाही देते हैं कि आप डरने वाले नहीं है, आप दबने वाले नहीं है, आप घरों में बैठने वाले नहीं है, यानी अल्लाह के दीन के लिए आप उठने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं और जान जान की कुर्बानी करने वाले हैं। और ये जान की कुर्बानी है कि इंसान सर्दी के इतनी इंतहाई सर्दी है, घर से निकलने को दिल नहीं जा रहा, तो आप तो आप है माशाल्लाह, ये जो हमारे बुजुर्ग बूढ़े बैठे हैं इनके चेहरों की झुरियां भी चेहरों पर नजर आ रही हैं, लेकिन इनके जो अकीदे की मजबूती और इनकी किरदार की कुव्वत और इनके हौसले की बुलंदी, इनका इतमाद जो है वो ये ऐलान करता है कि ये लोग जो हैं ये माशाल्लाह अल्लाह की खातिर जो है बड़ी मेहनत और कुर्बानी करने वाले लोग हैं, है ना। ऐसी बात तो असल बात क्या है कि इंसान बूढ़ा नहीं होता, उसके जज्बात और एहसास बूढ़े हो जाते हैं, और इंसान जो है वो जवान नहीं होता बल्कि उसके एहसास, जज्बात और ईमान उसको जवान रखते हैं। तो आपकी सोचे हैं कि आप किस रुख पर सोचती हैं, तो हक की सरबुलंदी के लिए जब भी काम की जरूरत पड़े, और जैसे कि अब है क्योंकि हर तरफ कुफर का दौर दौरा नजर आता है, कुफर जो है हमें फैला हुआ और बड़ा भरपूर झाग की तरह हर तरफ नजर आता है, गो कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, झाग है लेकिन झाग का फैलाव बहुत होता है ना। तो ऐसे में क्या करना है कि जान का भी जिहाद करना है, मेहनत करनी है, और फिर माल का जिहाद भी इसमें शामिल है, माल का जिहाद भी शामिल है, फिर जैसे जो है वो इसमें तोप भी आ जाता है, इसमें असलहा भी आ जाता है, यानी हर तरह का जिहाद। तो हमारे यहाँ आमतौर पर जिहाद से मुराद वही जिहाद लिया जाता है कि जो मैदान जंग में जाकर किया जाता है। अब याद रखें ये मक्की दौर है, ये जो सूरत अल फुरकान है जब ये नाजिल हुई ये कौन सी सूरत है, मक्की सूरत है, और मक्की दौर में मैदान में जाकर जिहाद करना है ना, वो फर्ज ही नहीं हुआ था, वो तो मदनी दौर में जाकर जो था वो फर्ज हुआ, और फिर वहां पे जाकर जो है वो गजवात वगैरह भी हुई, यानी मक्की दौर के आखिर में करके हमें जो है वो हिजरत और जिहाद की ऐसी आयात जो है वो मिलती हैं। तो अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये ऐलान करना कि आप कुरान को लेकर जो है वो जिहाद करें, तो दरअसल इससे मुराद ये है कि पैगंबर जो है और पैगंबर पर ईमान लाने वाले जो मुसलमान हैं, इन सब की जिंदगी का मकसद ये है कि कुरान मजीद के अंदर जो तौहीद के दलाइल हैं, जो अल्लाह के अहकामात हैं, जो अवामिर और नवाही अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, तो वो तमाम कुरान के दलाइल लेकर जोरों शोर के साथ जो है वो अपना काम किया जाए, और बराबर मसलसल उस काम में जो है वो लग जाए जो अल्लाह ताला ने हम सब पर जो है वो फर्ज किया है। तो बड़ा जिहाद करना है, बड़ी मेहनत करनी है, और अपने जैसे हम में से बाज लोग अल्लाह के दीन का काम तो बड़े करते हैं लेकिन अपने पास से करते हैं, यानी कुरान को हाथ में कुरान का हथियार नहीं लेते। जैसे एक जिहाद है ना कि तलवार से करना, ये तो आखिरी दर्जा है जिहाद का, इंतहाई कोशिश जो है जिसको जिहाद भी सैफ कहते हैं, जो मैदान जंग में जाके कुफर के खिलाफ किया जाता है। लेकिन एक जिहाद है जो हर वक्त मैदान में मुझे और आपको करना है, अमली जिंदगी में मुझे और आपको करना है। और इसके लिए हमें क्या बात पता चलती है कि सबसे पहला इसमें जिस जगह हमें जिहाद करना है, जिस चीज से करना है, मेरा और आपका नफ्स है। नफ्स जो है ये मेरा और आपका नफ्स पहला दुश्मन है, और ऐसा दुश्मन है जो शर पसंद है, ये अच्छाई से फरार हासिल करता है और बुराई जो है ना उसका हुक्म देता है। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कही थी ना, वमा उबर्रियु नफ्सी इन नफ्स लअमारतुम बिस्सू, सूरत यूसुफ आयत 53, कि मैं अपने नफ्स की पाकी बयान नहीं करता, बरात बयान नहीं करता, ये तो बुराई का हुक्म देता ही रहता है। अब हमारा जो नफ्स है आराम करना चाहता है, राहत इसको बड़ी पसंद है, कुरान ना याद करना चाहता है। बहुत से लोग हैं क्लास में आना चाहते हैं लेकिन कहते हैं ना भाई ना, वहां तो टेस्ट भी होते हैं, हम नहीं जाना चाहते। भाई आज कुरान मजीद को याद करके इसका टेस्ट देंगे तो इबादत है ना, टेस्ट तो हो ही रहा है दुनिया में। इसी तरह बाज लोग हैं कि बेमकसद कामों में मसरूफ रहते हैं, तो मुजाहिदा करना है, जिहाद करना है, अपने आप को बेमकसद काम जो है उनसे निकालना है। फिर आप देखें कि अमली जिंदगी में इंसान शहवत और ख्वाहिशात उसकी रोह में बहता चला जाता है, अगर आप इसको लगाम ना दें तो शहवत और ख्वाहिशात इतनी तवील हैं और इतनी तूल अमद इतनी लंबी लंबी हैं कि तूल अमल इतनी दराज हैं, हो सकता है कि इंसान की मौत जो है वही वाकया हो जाए। तो नफ्स अमारा जो है इसके खिलाफ जिहाद करना, और जो है वो नफ्स अमारा को नफ्स मुतमईना में तब्दील करना। एक तो है ना नफ्स लवामा, ये दरमियाने दर्जे का नफ्स है, लेकिन नफ्स मुतमईना जो है ना वो मेरा और आपका जो है वो मयार होना चाहिए कि मसलसल अपना मुहासबा करना, अपना जायजा लेना, मलामत करना, अपने आप को सजा देना, अगर नेकी में अतात में हमें कमजोरी नजर आए और हम कमजोरी कर जाएं तो अपने आप को सजा देना, यहां तक कि हम जो है पाक हो जाएं और नफ्स मुतमईना बन जाएं। तो यही मुजाहिदा नफ्स है जो अपनी जात से करना है। मसलन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह के बारे में आता है कि अगर नमाज बाद जमात रह जाती तो उस रात नींद तरक करके बिस्तर छोड़ देते थे, सारी रात इबादत में गुजार देते। एक दिन नमाज मगरिब को इतनी देर हो गई कि दोनों तारे नजर आने लगे, दो गुलाम आजाद किए उन्होंने। आप देखे ना, जब इंसान ऐसा इंफाक करता है जिसमें खुद भी जरूरत है लेकिन अल्लाह के रास्ते में दिया, तो फिर क्या है कि दिल को खींच पड़ती है ना, ये असल है ना जिहाद, ये असल मुजाहिदा है। और हजरत अली रजी अल्लाह फरमाया करते थे कि अल्लाह उन लोगों पर रहम करे जिनको लोग मरीज समझते हैं हालांकि वो बीमार नहीं, ये सब मुजाहिदा नफ्स के नताइज थे ना, बीमार नहीं है लेकिन लोग उनको जो है ना वो मरीज समझ रहे हैं। और जो है वो इसके अलावा जो मजीद अहम बात जो है वो हमारे सामने आती है, उससे क्या बात पता चलती है कि हजरत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह की बीवी का बयान है कि लंबे कयाम की वजह से हजरत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह की पिंडलियां सूज जाती और मैं इसके पीछे बैठती इस पर रहम के जज्बे से रोती रहती है। यानी वो बीवी अपने शोहर पर रहम की वजह से बैठी रो रही है कि पिंडियां सूजी हुई हैं और ये खड़े हुए कयाम कर रहे हैं। और वो ऐसे जाहिद भी थे कि 40 साल की उम्र के बाद बिस्तर लपेट कर रख देते और इस पर कभी ना सोते। यानी वो भी थे और ऐसे और लोग भी थे। मसलन जो है वो एक जो है हमारी बहन ये कह रही थी कि मेरा शोहर अब बूढ़ा हो गया है, अब मैं उसे कहती हूँ घर नमाज पढ़ा कर, लेकिन वो बर्फ के मौसम में, खराब मौसम में लाठी टेकता हुआ जो है मस्जिद की तरफ आता है ना। और वाकई मैं खुद भी कभी कभी जैसे रात के वक्त में, जैसे फजर की अजान का वक्त, या कभी बहुत ही तूफानी बर्फबारी या जब स्नो होती है, तो कभी जैसे पर्दा हटा के विंडो से थोड़ा सा देखूं तो कई लोग माशाल्लाह मस्जिद की तरफ आ रहे होते हैं ना। और ऐसे में घर से निकलना भी बड़ी बात है और पूजा ये कि मस्जिद को आबाद करना। तो ये क्या है, ये सारा का सारा जो है वो मुजाहिदा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी से हमें ये मिसाल मिलती है कि रात के वक्त इतना लंबा कयाम करते थे कि आपके कदम मुबारक सूज गए। जब आपसे पूछा गया तो कहा अफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का जो है वो शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, क्या ये मैं पसंद ना करूं कि अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा जो है वो बन जाऊं। तो असल बात जो हमें पता चलती है वो क्या है कि वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, के कुरान मजीद को लेकर जिहाद किया जाए। तो कैसे फिर हम कुरान मजीद को लेकर जिहाद करें? इसका ये नहीं मतलब कि हम कुरान मजीद जो है उसको बस पकड़ लेंगे और जिहाद करेंगे, बल्कि क्या है, कुरान मजीद को खोलें, इसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं, इसके मुताबिक अपनी शख्सियत को ढालें, इससे अपने दिल और दिमाग का जर्फ और बर्तन भरें, इस कुरान को समझें और उसके बाद भी इस कुरान को फैलाते चले जाएं, जो भी इसके अंदर अहकाम आते हैं अमल करते चले जाएं और लोगों को बताते चले जाएं। कुरान में हो गौतजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जुर्रत किरदार, है ना। तो असल बात क्या है कि आज हमारी जो जिंदगी है उसमें हमारा सबसे बड़ा मकसद जो हावी होना चाहिए हम पर, जिसको हमें जारी करना चाहिए, वो ये है कि ये कुरान के जरिए सोसाइटी के अंदर जो है वो हम रोशनी पैदा करें। कुरान की मिसाल एक सूरज की सी है, जैसे रात के ऊपर जब सूरज आता है तो रात का साया अंधेरा खत्म हो जाता है, सूरज की रोशनी फैल जाती है। इसी तरह कायनात के अंदर जुल्म, कुफ्र, शिर्क और गुनाहों के बहुत अंधेरे फैले हुए हैं। तो कुरान के सूरज को आप अपने हाथ में पकड़ लें, कुरान की रोशनी, कुरान का लैंप जो है इसको अपने हाथ में लें और गलियों में और सड़कों में और घरों में और शादी हॉलों में और बाजारों में और जहां जहां आप चलते चले जाएं, इस कुरान के जरिए से जो है आप रोशनी करते चले जाएं, मैं रोशनी करती चले जाऊं। और ये, और आप देखें कि रोशनी मुसलसल करनी है। मसलन घर में लाइट चली जाती है तो लोग डरने लगते हैं, चीखे मारने लगते हैं, है ना। आपको कभी जो है वो ऐसे घर में जाने का इत्तफाक हुआ हो जिसमें बिजली का कनेक्शन कट गया है। जैसे कल परसों किसी का फोन आया कि हम आजकल घर देख रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग हमारी ये बिक गई है तो घर देख रहे हैं, लेकिन मालिक मकान ने ना बिजली काट दी है। अब तसव्वुर करें कि बिजली के बगैर हम कैसे जाए ना, क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने कहा हुआ था कि लोग इंतजाम कर ले और हमें भी घर नहीं मिला ना। तो बगैर बिजली के, बगैर रोशनी के घर में रहना, रात का वक्त है, अब क्या करेंगे, और दिन के वक्त भी मुश्किल होता है। तो बगैर कुरान के इस दुनिया में रहना, बगैर कुरान को समझे इस दुनिया में जिंदगी बसर करना। तो ये जो दुनिया में जितने अंधेरे हैं, जितनी ज्यादा परेशानियां हैं, और दुनिया के अंदर ये जो रात है, रात कैसी है कि मद्दज़्ज़िल, रात बड़ी फैली हुई है, अंधेरा बड़ा फैला हुआ है, तो उसको रोशनी में बदलने के लिए कुरान को जो है ना मुझे और आपको अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाना चाहिए। आप अपने घर में कुरान नाजरा पढ़ाना शुरू कर दें, आप तजवीज से पढ़ाना शुरू कर दें, आप तर्जमा तफसीर से पढ़ाना शुरू कर दें, आप बाहर कहीं करीबी कोई भी जगह जो है जो मयसर है, किसी की बेसमेंट है, कोई सेंटर है, कोई मस्जिद है, वहां आप कुरान पढ़ाना शुरू कर दें। यानी जो सीख रही है आप सिखाती चली जाए। तो ये है असल में जिहाद करना। अब हमारा हाल क्या होता है कि कुरान तो पढ़ लिया है, कहते कि नहीं बोल नहीं सकते, दुनिया की बातें बहुत करते हैं, कुरान की बात करने की बारी आती है तो कहते हैं कि हम कर नहीं सकते। आप कुरान के लिए कंप्यूटर सीखे, आप घर में बैठी हैं, आपको कोई नहीं मिल रहा, आप दूर किसी ऐसी जगह पे हैं, जैसे अमेरिका और कैनेडा में आप देखें कि बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, बड़े फासले हैं, कई कई घंटों की फ्लाइट है, इतना इतने दूर लोग रहते हैं, कोई भी नहीं मिलता। अब आप क्या करें, अब आप सोचें, क्योंकि पानी पत्थरों में से रास्ता बनाता है कि किस तरह मैंने कुरान के जरिए जिहाद करना है। अब आप अगर कंप्यूटर आपको आता है तो आप कंप्यूटर में बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं, जैसे जो है वो पेल टॉक को आप उसकी डाउनलोड करके आप इसके जरिए से लोगों को बता सकती हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल अमेरिका में ये बहुत अहम है और आम है कि कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो ले ली जाती है और उसके बाद एक ही जो है वो रूम के अंदर बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, लोग उसको सिखाते हैं। फिर आप फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल की डील ले सकते हैं, यानी एक फोन के अंदर एक ऐसा होता है जिसमें लिमिटेशन होती है कि 20 25 30 एक रूम में लोग आ सकते हैं, वो भी एक डील है। एक तीन लोग रह सकते हैं, लोग उसमें सिखाते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ, कोई कॉन्फ्रेंस रूम में, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल में, कोई लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर, सुनते भी हैं और आगे सुनाते भी हैं, सीखते भी हैं और आप सिखाते भी हैं। आप कुछ और नहीं कर सकती। हमारा जो तस्कीरुल कुरान है इसमें माशाल्लाह अब आप देखें कि आप लेसन नंबर 188 पर पहुंच गए हैं और पहुंचने वाले हैं, 187 हमारा चल रहा है और हम 19वें पारे पर है। तो आप लोगों को ये कह सकती हैं कि सारे लेक्चर ऊपर डले हुए हैं, बस आप लेक्चर नंबर 1 सुन ले, मैं आपसे सुन लूंगी, आप नंबर 2 सुन ले, मैं आपसे सुन लूंगी, और आप किसी को भी वो कंप्यूटर से सुन ले, याद कर ले, बस आप उसे सुन ले, वो अपनी सहूलत के मुताबिक। अब कोई भी इस पे जाएगा, क्लिक करेगा, जिस पारे को चाहेगा उसको पारा मिल जाएगा। तो मेरे और आपके लिए तो बहुत सहूलतें हैं कि मैं और आप कुरान को समझें और फिर उसको जिंदगी में लोगों में आम कर दें। और अब आप देखें कि ये बात नहीं भूलनी, वजाहिद हुम, हुम उन सब से, यानी हुम का सीगा इस्तेमाल किया है, कुफर है तो एक, वो जिस भी हकीकत में है, वो जिस भी शक्ल में है, वो जिस भी अंदाज में है। अब आप मीडिया को देख लें, मीडिया जो है वो इस वक्त कुफर के हाथ में है ना, और ये दौर किसका है, मीडिया का दौर है। उनकी परवाज उन्हें ताबा फलक ले पहुंची, हम यही सोच रहे हैं कि ख्याल अच्छा है, कि हम यही सोचते हैं कि हाँ मीडिया में भी हमारे लोग होने चाहिए। और मीडिया जब मीडिया एक यही कहना शुरू कर देते हैं ना कि स्नो होने वाली है, बस स्नो होने वाली है, लोग बाहर जो रोड पर लोग होते हैं घर में आ जाते हैं, जितनी नमक होता है ना दुकानों पे वो बिक जाता है क्योंकि स्नो होने वाली है, लोग दूध खाना चीजें जमा कर लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्नो, इतने इंचेस स्नो होने वाली है, मीडिया। और बाज़ुकात और कई दफा उनकी ये बात जो है वो सही नहीं होती ना। इसी तरह किसी भी के खिलाफ मीडिया जब चल पड़ता है तो मीडिया जिसको चाहे मुजरिम बना दे, जिसको चाहे महरम बना दे, जिसको चाहे बरी कर दे, यानी वो चाहे तो मीडिया डाकू को फरिश्ता सिर्फ बनाकर पेश कर दे और फरिश्ता सिर्फ को जो जेलों में डाल दे और फिर उसके खिलाफ जो है बोलता चला जाए, तो क्या है मुसलमानों को भी इसके खिलाफ भी जो है हमें हमारे जो है वो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में हमारे लोगों को आना चाहिए, तैयार होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि कैसे हम जो है वो काम करें। तो ये दौर जो है ये वो दौर नहीं है कि आप मैदान में गए और जाके जो है वो आपने मुकाबला किया, आप हर हर मैदान में, मीडिया का मैदान है, कलम का है, फिर आप माल को खर्च करना, आप देखें कि मुसलमानों में बहुत लोग अमीर हैं। पिछले दिनों एक दफा जो है वो एक आया था कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन है, तो एक मुसलमान था, यानी जो दुनिया के दो तीन अमीर तरीन लोग थे उनमें मुसलमान का नाम भी था। तो मुसलमानों के पास दौलत की कमी नहीं है। इसी तरह हमारे जो इस्लामिक स्टेट्स हैं उसको देख लें, तो बात यह है कि दिल अमीर हो, कि जो कुछ मौजूद है उसमें हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। और इसमें मुझे और आपको अपने अमल का उसूल निकालना चाहिए और अपने आप से वादा करना चाहिए कि कुरान सीखने के दौरान भी और कुरान सीखने के बाद मैं इस कुरान के जरिए से जिहादन कबीरा कैसे करूंगी। आप इस पे खुद एक आर्टिकल लिखें कि आप जिहाद कबीरा कैसे करेंगी, क्योंकि आप सोचेंगी और आप अमल करेंगी। मुझे वो दिन याद है, ये तकरीबन 84 की बात है या 85 की, और मौलाना गौहरुर रहमान साहब ये लाहौर में आए मर्दान से और इन्होंने दौरा तफसीर करवाया। मुझे नहीं पता था दौरा तफसीर क्या होता है उस जमाने में, 84 की मेरा ख्याल बात है, 83-84 की। तो शौक बहुत था कि दौरा तफसीर में मतलब जाना है और कुरान को समझने का शौक बहुत था। और उसमें जब मैंने जाकर हमने शिरकत की तो हमारा दौरा तफसीर शुरू होता था सुबह 7 बजे से लेकर और मगरिब तक होता था पूरा, और बस ये पर्दा होता था, यानी मर्द और लोग भी शिरकत करते थे मदरसे के अंदर, मदरसा दारुल उलूम में लाहौर में होता था और हम लोग भी शिरकत करते थे। तो मगरिब से अफ्तारी से 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले वो हमें छुट्टी देते थे, और घर से इजाजत ली थी बड़ी दुआएं करके और रिक्वेस्ट करके, और अल्लाह ताला वालदैन को जजाय खैर दे के उन्होंने इजाजत दी। तो हम जैसे एक हॉस्टल में रहते थे और सीखते थे, और बड़े बड़े दो रजिस्टर जो थे वो नोट्स के उस वक्त भरे। उस वक्त मैं कहती थी, ये कभी वो नाम इमाम राजी का लेते थे, कभी वो जो है वो नाम किसी तफसीर का जो है वो लेते थे, इब्ने जरीर है और डिफरेंट मार्फुल कुरान और सारे। मैं बड़ी हैरान होती थी कि ये एक आयत की तफसीर में इतने नाम लेते हैं। मैं नामों तक से मुतारिफ नहीं थी, यानी उतने नामों से मुतारिफ नहीं थी। और लेकिन ये कि बस लिखते रहते थे, कलम मुसलसल लिखते रहते थे। फिर वहां पे हमें तहज्जुद के लिए भी उठाया जाता था, और अफ्तारी के बाद क्या होता था, फिर हमारा 1 घंटे की 1.5 घंटे की फिर जो दिन भर पड़ा होता था उससे हमारा मुजाकरा होता था। तो इस तरह हमने 15 शाबान से लेकर 27 रमजान तक, अब सोचिए सुबह 7 बजे से लेकर मगरिब तक दौरे तफसीर किया, और फिर मगरिब के बाद इशा तक, यानी तरावी से पहले भी, फिर तरावी भी पड़ी वहां पे, सारी चीजें। तो ऐसे लगता था जैसे ना जन्नत में कहीं रह रहे हैं। और अफ्तारी सहरी का मतलब इंतजाम तो था, लेकिन बड़ी सादगी के साथ वो होता था। और उसके बाद जब वो डेली क्या भी होता था कि मुजाकरे में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किसने सुबह कितने नोट्स लिए, किस आयत से क्या समझ आई। और जब आखिरी दिन था ना, आखिरी दिन जब आया, तो उन्होंने ना एक हमें दिया आर्टिकल, एक फॉर्म दिया गोशवारा, उसमें लिखा था कि आप ये फिल कर दें, और उसमें ये था कि आप अब कुरान के साथ क्या सलूक करेंगी, खुद अपने सीखने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए। और उसके सारे जो मैंने वो पढ़े, तो उसमें बात ये थी कि आप ये वादा करें कि अब आप दौरे तफसीर करवाएंगे ना। तो मैंने कहा मुझे तो आता भी नहीं, अब इतनी समझ भी नहीं, पर मैंने कहा कि नहीं, जो है ना मैं वादा कर लेती हूँ कि मैं ये दौरा तफसीर करूंगी, इसलिए कि जितना मुझे आता है मैं उसी की मुकल्लफ हूँ ना। और वो मैंने उस वक्त वो फॉर्म उनको फिल करके दे दिया, और मैंने कहा कि मैं करूंगी दौरा तफसीर। मुझे उसकी तफसील नहीं याद कि क्या था उसमें। उसके बाद मैं जब 84 85 मैं यूनिवर्सिटी की, फिर यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया, फिर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही, फिर 1 MA, फिर दूसरा MA किया, फिर मैंने BEd किया। इस दौरान छोटे मोटे दर्स लेक्चर चीजें ये तो करती थी, लेकिन कुरान को जिस तरह से पढ़ा था उसको लोगों को पढ़ाना, तो ये एक चीज जो थी इतना बड़ा मुहर्रिक बनी कि उनका पूछना और मेरा ये लिख देना कि मुझे करना है। और मैंने कहा कि मुझे ये करना है। 90 में जब शादी हुई, फौरन ही मैंने दौरे तफसीर करवाया शहर के लोगों को जमा करके। और हमारे यहाँ वहां पे, यानी जहां मैं ससुराल में गई, तो सरगोधा में एक बहुत बड़ी गायनोलॉजिस्ट थी, उसने अपना घर दे दिया। मतलब जब मैंने कहा कि शुरू करना है, लोगों से रابطہ किया, आम औरत थी, उसने अपना घर दिया। और आप सोचे कि इस तरह, और वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या बात पता चलती है कि कभी अपने दिल को छोटा ना किया करें कि अगर आपसे कहा जाए कि इस पर लिखें कि आप जिहादे कबीर कैसे करेंगी अपनी जात पर और दूसरों के लिए। तो मैं तो अपने उस उस्ताद को, जिनको जिनके मैंने आमने सामने बैठ कर नहीं पढ़ा, उनके पसे पर्दा हमें आवाज आती थी, ऐसे वो ललकारते थे और बात करते थे कि यानी कोई उनका सामने बैठा हुआ स्टूडेंट को नींद या ऊंग आती थी, तो कहते थे कुरान पढ़ता है और तुझे ऊंग आती है, जब तू दुनिया की बातें करता है तेरी आंखें खुली होती हैं। मतलब ऐसे बात करते थे कि सारे लोग जागते थे ना, बड़ा उनका अंदाज, पठान थे बड़ा, मतलब मैंने उनसे सीखा, और उन्होंने उनके बहुत सी किताबें लिखी हैं। तो असल बात क्या है कि आप भी, आपका ये होमवर्क है कि आप ये बात लिखें कि आप कुरान से जिहाद कैसे करेंगी अपनी जात और फिर दूसरों के लिए, आप दूसरों को कुरान कैसे पहुंचाएंगी। और जब आप, आपका ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, आप घर में, आप बैठ नहीं जाएंगे कुरान को बंद करके, घर के अंदर या रिश्तेदारों में या हमसायों में या बेसमेंट में या कहीं भी, अपने बच्चों को लेकर, पड़ोसियों के बच्चों को लेकर आपने इस कुरान के जरिए जिहाद करना है, जिस तरह से भी कर सकती हैं। फला तुतेअल काफिरीना, पस आप काफरों की बात हरगिज ना मानो, क्योंकि जिसको ऊंचा और बड़ा समझा जाता है उसकी अताअत की जाती है। तो कुफर ऊंचा नहीं है, बड़ा नहीं है, काफिर बड़े नहीं है, मक्की दौर में डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन आपने उनकी बात जो है वो नहीं मानी, रसूल अल्लाह को कहा जा रहा है। तो आज का दौर भी अगर कुफर का दौर बजाहिर नजर आता है, लेकिन उसकी हैसियत झाग की तरह है। वजा अल हक व जहक अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, उनकी बात नहीं माननी, उनकी अतात नहीं करनी, उनके पीछे नहीं चलना। किसके पीछे चलना है? कुरान के, अल्लाह के, और कुरान को अपनी जिंदगी का ओढ़ना और बिछोना बनाना है, अपनी शख्सियत को उसके मुताबिक ढालना है, यहाँ तक कि हमें जो है वो जन्नत मिल जाए। और याद रखे, भूलना नहीं है, वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा, अपनी बात नहीं करनी, कुरान की बात करनी है, कुरान को लेकर, याद रखना इस बात को। हम सब महफिलों में जाते हैं, बड़ी बातें करते हैं, कुरान की बात नहीं करते, कुरान को लेकर جو ہے وہ روشنی پھیلانی ہے، میری اور آپ کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بڑا جہاد جو جیسے جس طرح جتنی ہمارے ذرائع وسائل ہیں ان کو اس سمندر میں ڈال دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال دینے کے بعد کہ سورج کی روشنی اصل میں قرآن کی روشنی ہے، تو قرآن مجید کے ذریعے کائنات میں روشنی کو پھیلایا جائے اور بڑا جہاد کیا جائے، پھر توجہ دلاتے ہیں، وہ الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا۔ اور وہی تو ہے کہ جس نے مرجا ملا رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے، البحرین دو سمندروں کو، ھذا یہ عذب میٹھا ہے، فرات بہت میٹھا، نہایت میٹھا، وہذا ملح اور یہ نمکین ہے، اجاج کڑوا کھاری، وجعل بینہما اور بنایا ان دونوں کے درمیان برزخن پردہ رکاوٹ، وحجرم محجورا، وحجرم بند روک، محجورا بندی ہوئی، اور ایک روک بنا دی ان کے درمیان۔ اب آپ دیکھیے، اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ کائنات کی ضد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کائنات کے اندر جو ازداد ہے، جو ضد ہے، جو تضاد ہے، اس ساروں کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہے نا؟ اور کیا کہا، وہو الذی، اور وہی تو ہے، کون ہے وہ؟ الرحمن، وہ کون ہے؟ الہ، وہ کون ہے؟ اللہ، وہ کون ہے؟ رب، وہو الذی، یہاں پہ الذی آیا، اور آپ پچھلی آیتوں کو دیکھیں تو بار بار آ رہا ہے وہو الذی، وہو الذی، لیکن اگر آپ آیت نمبر دیکھیں، یہ 45، اس میں آیا ہے الم ترا الی ربی کا، رب کا ذکر کیا ہے، تو یہ اللہ کی ربوبیت کے دلائل ہیں، تو وہی رب تو ہے۔ الذی وہ جو، جیسے آپ کسی کی بات شروع کرنا چاہیں اور کہیں کہ جو وہ بندہ، اس کا ایک دفعہ نام لے کے آپ کہیں کہ وہ جو یہ اور یہ اور یہ اور یہ ہے، یعنی گویا کہ آپ اسے بڑی مروب ہیں، بڑی اس کی شخصیت آپ کی پسندیدہ شخصیت ہے، آپ اس کا تعارف کرواتی ہیں تو اس کی صفات ہے کہ گنتی چلی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس کائنات میں سب سے زیادہ اہم حقیقت ہے، جو حق ہے، وہو الذی، اور وہی تو ہے، مراجا، مراجا جو ہے اس کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ دو چیزوں کو اس طرح ملانا یا ان کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ان دونوں کی انفرادی حیثیت بھی برقرار رہے اور ان کی خاصیت بھی برقرار رہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا غسن مریج، ہے نا، غسن مریج، باہم گتھی ہوئی ٹہنیاں۔ اب آپ کبھی کسی درخت کو دیکھیں، وہ درخت ایسے کہ اس کی ٹہنیاں شاخیں ایک دوسرے کے اندر چلی گئی ہیں، اور اگر آپ غور سے دیکھیں گی بہت گڈمٹ ہوئی ہوئی ہیں، بہت آپس میں مکس اپ ہیں، ملی ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ کون سی ٹہنی کہاں جا رہی ہے، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ٹیڑھی میڑھی، سیدھی جیسی بھی۔ اسی طرح مرجا لفظ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا، جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بکریاں ہوتی ہیں یا جو یہ چرواہا جو ہوتا ہے، جب وہ جانوروں کو، یہ بکریاں، بھیڑے، گائے وغیرہ، ان کو جب چھوڑ دیتا ہے چرنے کے لیے، تو وہ کیسے چرتی ہیں؟ ایک ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے، ایک ٹیڑھی ہے، ایک سیدھی ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، یعنی آپس میں وہ گڈمڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پتا چل رہا ہوتا ہے یہ بکری ہے، یہ بھیڑ ہے، لیکن آپس میں بالکل گتھم گتھا، بالکل آپس میں جو ہے وہ ملی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو بات اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری قدرت کی ایک نہایت ہی حیران کن نشانی ہے، اور نشانی بڑی عام ہے، اور نشانی کیا ہے کہ بہت سے لوگ اس نشانی کو جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ مرج البحرین، کہ اس نے چھوڑ رکھا ہے دو سمندروں کو، بحرین باہر سے ہے، سمندر کو کہتے ہیں، اور بحرین، بحرین ایک ملک بھی ہے، हमें खुद उसमें कई साल रहने का इत्तफाक हुआ, ज्यादातर पानी ही पानी है। तो दो समंदर, बहरैन या नून तस्निया का है, दो समंदर, तो छोड़ रखा है दो समंदरों को। तो दो समंदर कैसे हैं? हाजा अजबुन फुरातुन, ये है अजबुन, आइन जाल बा जो है इसके मानी है मीठा, खुशगवार पानी, ठंडा और मीठा, इतना ठंडा और मीठा कि खाम खा उसको पीने को दिल चाहे। हाजा अजबुन, तो आइन जाल बा जो है इसके मानी है मीठे के, ठंडा मीठा। अब इतना ही काफी था कि हाजा अजबुन फुरात फिर से आ गया, फुरात, और फुरात का लफ्ज भी ठंडे मीठे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बाज ये कहते हैं कि ठंडा मीठा, और बाज ये कहते हैं कि जब वो कसीर तादाद में हो, बहुत ज्यादा हो, तो उस लिए उस वक्त भी फुरात जो है वो कहते हैं। और फुरात जो है, कहते हैं कि फुरात के मानी है काट देना, फारा ता के मानी है काट देना, तोड़ देना। तो मीठा पानी क्या करता है? प्यास को काट देता है, प्यास को खत्म कर देता है। और यहां पर अल्लाह ताला का ये बात कहना कि हाजा अजबुन फुरातुन, तो गोया के अज जो है ये भी एक सिफ्त है, ये मीठा है पानी, और फुरात बहुत मीठा है ना, लजीज और शीरी। तो ये ताकीद के मानी जब पाए जाते हैं तो उस वक्त जो है ये बात कहने का मकसद क्या होता है कि उसकी अहमियत को बताया जाए, है ना। अल्लाह ताला के रब होने पर, उसके एक होने पर जो है वो अल्लाह की कुदरत जो है ना, ये उसकी तरफ अल्लाह ताला जो है वो मुतवज्जो कर रहे हैं, दलील दे रहे हैं। ये अल्लाह की कुदरत है कि दो समंदर जो है अल्लाह ने उनको छोड़ रखा है, और एक कैसा है? अजबुन फुरातुन, बहुत मीठा, निहायत मीठा, शीरी। वहाजा मिलहुन उजाज, और ये है मिलहुन नमकीन, ये नमक जो है उसको मिलहुन कहते हैं। और जो आप कभी नमक खरीदें वहां पे, तो उसके ऊपर भी बाहर ये लिखा हुआ होता है, तो मिलहुन नमकीन को कहते हैं। अब उजाज भी आ गया, तो हमजा जीम जीम, इसके मानी क्या होते हैं? कि वो चीज जो खारी हो, जो कड़वी हो, तो उसके लिए उजाज का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कि पानी जो है, दूसरा पानी जो है नमकीन है और उसके साथ खारा है और उसके साथ तलख है और उसके साथ वो पानी जो है वो कड़वा है। उजाज यानी नमकीन है और कड़वा है। तो गोया के यहाँ पे भी जो है वो ताकीद के मानी पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने जो है मिलहुन के साथ उजाज की सिफ्त भी कर दी। यानी ये मिलहुन भी पानी की सिफ्त है, उजाजुन भी पानी की सिफ्त है, गोया के सख्त खारी कड़वा पानी। तो गोया के दो पानी, दो तरह का पानी जो है वो अल्लाह ताला ने छोड़ रखा है। वजाला बैनहुमा बरज़खन, और अहम बात क्या है? उन दोनों के दरमियान एक पर्दा है, बरज़खन। वजाला और बना दी बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, किस दोनों के दरमियान? बहरैन, जो एक मीठे पानी का है एक कड़वे पानी का है, इन दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने बना दी बरज़खन। अब बरज़ख पहले भी पढ़ चुकी हैं सूरत मोमिनून में, और इसके मानी है पर्दा, रकावट और एक जो है वो बंद। तो गोया के एक पर्दा है, एक रकावट है जो इन दोनों समंदरों के दरमियान है। वहिजरम महजूरा, और हाजीम रा, आप पहले भी इसको पढ़ चुकी हैं सूरत अल फुरकान आयत 22 में। तो इसके मानी क्या है यहाँ पे? मजबूत आड़ और ओट के है, मुहकम ओट। वहिजरम महजूरा, और अल्लाह ताला ने जो है वो एक ओट जो है वो बना रखी है, एक रकावट इन दोनों के दरमियान जो है वो कायम कर रखी है। वह हिजरन और आड़ है, महजूरा मजबूत बना दी। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या कह रहे हैं कि मेहरबान रब की कुदरत का करिश्मा देखें, किसने कड़वे पानी के समंदर की तह में मीठा पानी पैदा किया और इसका ऐसा मजबूत इंतजाम किया कि पानी आपस में गड़बड़ नहीं होता। और इस तरह के बहुत से मज़ाहिरे हमें कायनात में नजर आते हैं कि अल्लाह ताला ने मरजल बहरैन, خلق المائن، دو طرح کا پانی پیدا کیا ہے، ایک میٹھا اور دوسرا کھاری. اور آپ دیکھیں میٹھا پانی جو ہے ہمیں نہروں، چشموں، کنووں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان میں بھی ملتا ہے، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور پانی کا استعمال کیے بغیر انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا. اور دوسری طرف ہمیں کھاری پانی بھی نظر آتا ہے جو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں کے اندر پایا جاتا ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ ایک میٹھا پانی ہمیں عام نظر آتا ہے دریا نہروں میں، دریا میں یا یہ کنوؤں میں، اور دوسرا کیا ہے کہ سمندروں کے اندر کھاری پانی. اور ایک اس کے معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ کائنات میں اگر آپ جائزہ لیں تو بہت سی جگہوں پہ ایسے پانی جو ہے وہ ملتا ہے کہ اوپر اس کے کڑوا پانی ہوتا ہے، کھاری پانی ہوتا ہے، اور نیچے میٹھا پانی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خود سمندر میں بھی بہت سی جگہ پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں جن کا پانی سمندر کے نہایت کڑوے پانی کے درمیان میں اپنی مٹھاس جو ہے وہ قائم رکھتا ہے. جیسے بحرین ہے تو بحرین میں بھی جو ہے وہ میٹھے پانی کے چشمے ہیں. اور جب یہ امریکن کمپنی جو تھی یہ گئی ہے تو اس نے جب سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ جو ہے وہ نیچے سے میٹھے پانی کے چشموں سے جو تھی وہ پانی حاصل کرتی تھی. اسی طرح جو ہے وہ مفسرین جو ہیں ہمیں اور کیا بتاتے ہیں کہ جیسے انڈیا میں، ہندوستان کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے پانی کے چشمے موجود ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ جیسے الہ آباد، انڈیا میں، ہندوستان میں الہ آباد میں گنگا اور جمنا کا سنگم، جب یہاں پہ جہاں پہ گنگا اور جمنا آپس میں ملتے ہیں تو وہاں پہ بھی کیا ہے کہ ایک طرف پانی میٹھا ہے، دوسری طرف کڑوا ہے، لیکن وہ گرتا تو ہے لیکن وہ میٹھا ایک سائڈ پر ہو کے چلتا رہتا ہے اور کڑوا جو ہے وہ ایک سائڈ پر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بیان القرآن میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ارکان سے چاٹ گام تک دریا کی شان یہ ہے، دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دونوں سائڈوں بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں. کہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں سائڈ، ایک سائڈ پر دیکھیں تو ایک طرح کا دریا ہے میٹھے میٹھے پانی کا، دوسری طرف دیکھیں تو کڑوے پانی کا. ایک کا پانی سفید ہے اور ایک کا سیاہ. سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی تلاطم ہوتا ہے اور سفید پانی بالکل رکا رہتا ہے. کشتی سفید پانی میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں کے سنگم کی جگہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے، سیاہ کڑوا ہے نا. اسی طرح جو ہے پھر وہ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ ضلع باریسال میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نکلی ہیں، ایک کا پانی کھاری بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہاں گجرات میں جو ہے جہاں میں آج کل ٹھہرا ہوا ہوں، سمندر وہاں سے تقریباً 10-12 میل کے فاصلے پر ہے. ادھر کی ندیوں میں بھی برابر مد و جزر جوار بھاٹا ہوتا رہتا ہے. یہ جوار بھاٹا کیا ہوتا ہے؟ جوار بھاٹا جو ہے یہ کہتے ہیں سرفیس ٹینشن کو. یہ سرفیس ٹینشن کیا ہوتی ہے اور کس وجہ سے ہوتی ہے؟ چاند، بالکل صحیح، چاند کی وجہ سے جو ہے یہ سرفیس ٹینشن جو ہے وہ ہوتی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ سرفیس ٹینشن ہوتی ہے جس کو اردو میں جوار بھاٹا کہتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، اوپر کھاری رہتا ہے اور نیچے میٹھا رہتا ہے. اور پھر وہ جو ہے وہ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے کھاری پانی اتر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا توں پانی جو ہے وہ باقی رہتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو کھاری اور میٹھا پانی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کے طور پر جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیا ہے. اسی طرح دریائے نیلم میں اگر آپ کا جانے کا، گزرنے کا اتفاق ہو، وہاں پہ بھی آپ کو یہ کیفیت نظر آئے گی. پھر اسی طرح جو ہے وہ فرات، یہ بھی جو ہے وہ ایک اس کا دریا کا نام ہے، سمندر کا نام ہے، تو یہاں بھی آپ کو یہ چیز جو ہے دجلہ اور فرات، تو اس میں یہ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں. تو دراصل اللہ رب العزت اپنی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دو दो तरह का पानी आपस में चलता है लेकिन आपस में मिलता नहीं है। मसलन आप देखें कि दुनिया में आप जो हैं वो अगर एक शरबत आपके पास जो है वो सफेद रंग का है, दूसरा आपके पास जैसे रूह अफजा है, और एक आपने मिल्क शेक बनाया हुआ है, एक को आप दूसरे में डालेंगी मिक्स हो जाएगा ना, मिक्स हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं कि ये आपस में मिलते नहीं हैं, नजर नहीं आती दीवार। आमतौर पे तो दीवार खड़ी कर दी जाती है, नजर तो नहीं आ रही कोई दीवार, लेकिन वजह अल्लाह बेइन्नहुमा बरज़खन, अल्लाह ने इनके दरमियान एक पर्दा, एक दीवार, एक रकावट खड़ी कर दी है। और वो रकावट कैसी है? गैर मरई दीवार। मरई कौन सी होती है? जो नजर आए। और गैर मरई कौन सी है? जो नजर ना आए। तो ये दीवार जो है ये नजर नहीं आती हमें। दोनों दरिया साथ बहते हैं लेकिन मीठा नमकीन के साथ जाकर मिलता नहीं है। सूरत अर-रहमान आयत 19 और 20 में भी यही बात कही, मरज अल-बहरैन यल्तकियान, कि उसने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं, बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक बरज़ख है, एक दीवार, एक रकावट है, कि एक हद से उनको फिर वो आगे रकावट जो है वो जाने नहीं देती, एक खास हद से उनको बात जो है वो आगे बढ़ने नहीं देती। तो आप देखें कि ये जो आयत है इससे फिर हमें दो बातें पता चलती हैं। एक इसके मानी तो ये हैं कि ये जो है ना कि ये दो समंदर अल्लाह ताला ने छोड़ रखे हैं, तो इसके मानी क्या हैं कि जब कोई बड़ा दरिया समंदर में आकर मिलता है तो उस वक्त आप ये कैफियत देख सकते हैं, है ना। जब किसी संगम पर दो दरिया मिलते हैं या कोई बड़ा दरिया समंदर में जाकर गिरता है तो ऐसी जगह पर वहां मिलने के बावजूद दोनों पानी अलग अलग, दोनों के बीच में एक धारी सी दूर तक जाती हुई नजर आती है। तो कौन सी चीज है जो पानियों को आपस में मिलने नहीं देती, है ना। और इसी तरह सरफेस टेंशन जो समंदर में ज्वार भाटा है, इसको भी आप याद में रखें कि जब भी ज्वार भाटा होता है, सरफेस टेंशन होती है, तो समंदर का खारी पानी जो है वो दरिया के मीठे पानी के ऊपर आ जाता है। वो ऊपर की सरफेस की टेंशन की वजह से दोनों पानी लेकिन रहते बिल्कुल अलग अलग है। तो ये मुशाहिदा साइंसदान भी कर रहे हैं, रिसर्च भी हमारे सामने आ रही है, लेकिन इतने साल पहले अल्लाह ताला ने ये बात जो है वो बता दी। तो ये कौन करता है? ये अल्लाह ताला करता है। तो इससे जो बात बतानी है, जो चीज मुझे और आपको समझानी है कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला की हिकमत है, ये अल्लाह ताला की रबूबियत है कि हजारों साल से समंदर मौजूद हैं और आप देखें कि इतनी बड़ी मिकदार में अल्लाह ने उसमें जो है वो जैसे मिलहुन लिखा है ना, मलाहत रखी है, नमकियात रखी हुई है। और ये समंदर का इतना कसीर पानी, अगर इसमें नमकियात ना होती, मिलहुन ना होते, तो साइंसदान कहते हैं कि बदबू और सड़ान और ताफुन पैदा हो जाता, और उस बदबू और ताफुन की वजह से फिर क्या होता कि दुनिया में कोई जिंदा ही ना रहता। और इनसे, समंदरों से जो उठने वाली हवाएं हैं वो सही होती हैं, उनका पानी पाक हो जाता है, और समंदर वो नमकियात की वजह से उसका मुर्दार भी फिर हलाल है कि जो है वो बाहर, जिसमें यहां तक कि ताफुन पैदा ना हो। तो गोया के ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। तो यहाँ पे भी आपको तजाद नजर आया ना, हाजा अज़बुन फुरातुन व हाजा मिलहुन उजाज, है ना। तो इसी तरह इस कायनात में तजाद है, जिस तरह एक पानी के अंदर मीठा भी और नमकीन भी होता है, इसी तरह इस कायनात के अंदर कुफर है और फिर इस्लाम है, हक है और फिर बातिल है ना, हक और बातिल भी है। फिर इससे क्या बात पता चलती है कि अगर ये समंदर ज्यादा है, दरिया नहरें कम है, मीठा पानी हमें बजाहिर कम नजर आ रहा है, और समंदर का पानी, समंदर ज्यादा बड़ा होता है ना, लेकिन समंदर मीठे पानी को खा नहीं जाता, उसको खत्म नहीं करता, उसकी हैसियत बरकरार रहती है। इसी तरह जो अच्छे लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो ईमान लाने वाले हैं, कुफर जो बढ़ता और फलता फूलता नजर आता है, फैलता नजर आता है, वो इस्लाम को खत्म नहीं कर सकता, उसको निगल नहीं सकता। तो इस्लाम जो है वो बरकरार है, हक जो है वो बरकरार है। मुसलमान जो हैं वो अपनी हैसियत, अपनी शख्सियत, अपना तशखुस, अपना वजूद, جو ایمان کا وجود ہے اس کو برقرار رکھیں. اور پھر کیا ہے کہ میٹھا پانی ویسے عام طور پہ نیچے ہوتا ہے, اوپر جو ہے وہ نمکین پانی ہوتا ہے, جو سمندر کے اندر سے میٹھے پانی کے چشمے ہیں, ہے نا. تو اس سے بھی کیا بات پتا چلتی ہے کہ جس طرح سمندر کے اندر جوار بھاٹا اٹھتا ہے, سرفیس ٹینشن ہوتی ہے, اور لیکن میٹھا پانی کا وجود ختم نہیں ہو جاتا, اسی طرح کائنات کے اندر جو ایک جنگ ہے, ایک کشمکش ہے حق اور باطل میں, حق قائم رہے گا. حق والے جو مسلمان ہیں ان کو دل چھوٹا نہیں کرنا. اور مکی دور تھا ہی جوار اور بھاٹے کا دور, مکی دور تھا ہی ٹینشن کا دور, ہے نا. اہل مکہ تنگ کرتے تھے, ستاتے تھے مسلمانوں پر, بڑے سخت دن تھے نا. اور لوگ پوچھتے تھے اللہ کے نبی, متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ سوچیں کتنے سخت دن تھے مسلمانوں پر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر ہے ہی ایسا, ہاذا ازون فراتن ہاذا ملون اجاج, تم پانی سے سیکھو, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے جو روک کھڑی کر دی ہے وہ دونوں کو گڈمڈ نہیں ہونے دے گی. تو حق اپنی اس کی ایک تشخص ہے, وہ مکس اپ کبھی نہیں ہوگا, کفر کے ساتھ وہ کبھی ملے گا نہیں. تو یہاں پہ ہمیں پانی کی خاصیت یہ بتا رہی ہے کہ میٹھا پانی نمکین پانی کے اندر مدغم نہیں ہو جاتا. جب اللہ کی یہ نشانی ہے اور یہ عظیم نشانی ہے, تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حق جو ہے وہ کبھی بھی باطل کا حصہ نہیں بنے گا, ہے نا. اللہ تعالی جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ نے اگر باطل کو ڈھیل دی ہوئی ہے, جب چاہتا ہے اس کو روک دیتا ہے, جہاں چاہتا ہے اس کو روک دیتا ہے نا. مجال نہیں کہ باطل پھر اللہ کی مقرر کردہ حد سے جو ہے وہ باہر نکل سکے. تو پھر یعنی یہ اصل میں یہ آیت بھی اللہ کی ازداد ضد ہے نا, ازداد اس کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ کائنات میں ازداد ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ رات کا خدا کوئی اور ہے اور دن کا کوئی اور ہے, میٹھے پانی کا کوئی اور ہے اور کڑوے پانی کا کوئی اور ہے, ان سب کا ایک ہی خدا ہے. تو اس کے آگے ہم سب کو جھک جانا چاہیے. وہ اللذی, اور وہی تو ہے, خلق من الماء بشرا, کہ اس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو. پیچھے پانیوں کا ذکر ہو رہا تھا جو میٹھا بھی ہے اور کڑوا بھی ہے, جس کو انسان استعمال کرتا ہے. اب جو پانی کا ذکر ہو رہا ہے تو کون سے پانی کا؟ جو انسان کی پیدائش کی حقیقت ہے, ہے نا, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک حقیر سے نطفے سے پانی کی بوند سے انسان کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. وہ اللہ جی خلق من الماء, پانی سے اس نے پیدا کیا, وہ اللہ ہی تو ہے, بشرن انسان. اب دیکھیں حقیر سا پانی کا نطفہ, چھوٹی سی بوند, اس سے انسان پیدا ہوتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ فجا لہو, پھر اس نے بنا دیا اس کو نصبا و سہرا, اس سے نصب بھی اور سسرار بھی. تو نصب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلا دیے. حقیر پانی کی بوند سے یہاں بھی تضاد ہوا, پانی ایک ہے لیکن تضاد کیا ہے؟ انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق کو بنا کر کھڑا کیا, اور کرشمہ یہ ہے کہ اس نے انسان کا ایک نمونہ نہیں بنایا, ایک پانی دو الگ نمونے بنائے, ایک عورت ہے اور دوسرا مرد ہے, ہے نا. انسانیت میں یکساں ہیں, جسمانی اور نفسانی جو خصوصیات ہیں اس میں بالکل مختلف ہیں, لیکن اس اختلاف کے باوجود ان میں باہم مخالفت اور تضاد نہیں ہے, ہے نا. جسمانی اور نفسانی خصوصیات جو ہیں وہ مختلف ہیں, انسانیت میں ایک جیسے ہیں مرد اور عورت, لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی آپس میں ان میں تضاد نہیں ہے, ان میں اختلاف نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کا پورا جوڑ ہے. اور جب دونوں جوڑوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو ایک عجیب توازن کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, ایک پانی کے نطفے سے مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں, عورتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جب مرد اور عورت پیدا ہوتے ہیں تو سلسلے دو نکل آتے ہیں, فجا لہو نصبا و سہرا, اور وہ جو دو سلسلے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سلسلہ ہے نصب کا, آپ کو پتہ ہے نا نصب, تو نصب کا جو سلسلہ ہے اس میں تعلق چلتا ہے بیٹوں کا اور پوتوں کا, اور جو ہے وہ اسی سے پھر گھر میں بہویں آتی ہیں. اور جو دوسرا سلسلہ ہے وہ ہے سہرا, جس کا تعلق جو ہے وہ بیٹیوں سے ہے, और बेटियों से फिर नवासियों का सिलसिला चलता है, वो दूसरे घरों में बहुएं बनकर चलती हैं जाती हैं। इस तरह खानदान से खानदान जुड़कर पूरे के पूरे मुल्क और पूरी की पूरी दुनिया एक नस्ल और एक तमद्दुन में वाबस्ता हो जाती है ना। ये नसब तो आपको पता है ना, नसब है ना, जो खून के रिश्ते हैं, हसब नसब आप पीछे पड़ चुकी। और इसी तरह ये रजात के रिश्ते भी हसब नसब में शामिल हो जाते हैं, ये सूरत निसा में आपने तफसील से पढ़ा। अब वो सेहरा जो है स्वाद हारा, मैंने आपको बताया था कि स्वाद हारा जो है इसके मानी है पिघलाना, जैसे सूरज का गर्मी पहुंचाना, तो सूरज करीब होता है तो कोई चीज पिघलती है ना, तो इसी तरह ये सेहरा जो है ये कराबतदारी को कहते हैं। और बेटी जब दे दी जाती है तो उससे फिर एक रिश्तेदारी का सिलसिला शुरू हो जाता है बेटी की वजह से, यानी असल में बेटी रहम के रिश्ते भी करार पाते हैं। इसी तरह फिर सहारा मुसाहरा तन सुसर बनना, तो नसब है बेटे से जो सिलसिला चलता है औलाद और नस्ल का, वसेरा यानी बेटियों से जो रिश्ता चलता है, तो नसब और ससुराल के दो अलग अलग सिलसिले अल्लाह ने चला दिए। वकान रब्बू का कदीरा, और तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। तो यहाँ पे ये कहना कि तेरा रब जो है वो बड़ा ही कुदरत वाला है, इससे ये बात पता चलती है कि ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का इख्तियार है कि एक ही पानी से उसने अजदाद को वजूद दिया। जिद हकीर पानी के नुतफे से अल्लाह ताला ने जो है वो क्या किया, मर्द और औरत, हसब के और सेहर के रिश्ते जो थे वो दुनिया में फैला दिए। एक मुआशरत, एक इज्तमाइयत अल्लाह ने वजूद में लाई, और इसमें भी एक हिकमत है, इसमें भी अल्लाह ताला की एक जो है वो कुदरत है कि एक तरफ वो नसब के रिश्तों को इंसान लेकर चलता है तो दूसरी तरफ ससुराली रिश्तेदारी को इंसान लेकर जो है वो चलता है। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से जब एक ही मादा से अजदाद को वजूद में लेकर आता है, और अजदाद के अंदर एक पैवस्तगी है, अजदाद के अंदर एक वाबस्तगी है, उनके अंदर आपस में इख्तलाफ नहीं है बल्कि क्या है कि आपस में उनके अंदर तजाद नहीं है बल्कि तवाजुन है ना। तो जैसे मर्द का जोड़ा औरत है, एक दुधियाल है एक ननिहाल है, इसी तरह एक दुनिया है एक आखरत है, जिंदगी है तो मौत है, हर अमल की जजा और सजा है, और फिर जन्नत और जहन्नुम है। तो ये कायनात के अंदर जो अजदाद हैं वो एक चीज की तरफ इशारा करती हैं, और वो चीज क्या है, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, और वो इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर उनकी जो इनको ना नफा दे सकते हैं और ना नुकसान। अजीब बात है कि वो अल्लाह जिसने इस कायनात के अंदर जो है वो मद्दज़िल पैदा किया, साया है ना रात, फिर सूरज शम्स दिन, फिर अल्लाह ताला ने लई लिबास बनाया, नौम बनाया उसको, और नहार को नशूरा जी उठने का जरिया, फिर उसने रियाह को भेजा, फिर उसने मान तहूरा नाजिल किया, फिर वो अल्लाह जो है जिसने जो है वो मरजल बहरेन जो है उनको छोड़ रखा है, दो समंदरों को, अजमुन फुरात भी हैं, मिलहुन उजाज भी हैं, फिर उसने पानी के साथ बशरन इंसान को पैदा किया। तो रब ने ये सारे काम किए और लोग उस अल्लाह को छोड़कर फिर बुतों की पूजा करते हैं, फिर लोग शिर्क करते हैं, अहले मक्का भी करते थे और आज का इंसान भी करता है, और अफसोस के आज मुसलमानों के अंदर मुशरिक पाए जाते हैं, है ना, काफिर तो इनकार करते थे और मुशरिक थे, आज मुसलमानों के अंदर जो मुशरिक पाए जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या बात हमें बता रहे हैं, वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यन्फअहुम वला यदुरहुम, के वो इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के सिवा, वाला यन्फाहुम, जो उनको नफा नहीं दे सकते, वाला यदुर्रहुम, और ना ही उनको नुकसान, और ऊपर से जुल्म क्या है, और ऊपर से मजीद बात क्या है, वकानल काफिरु अला रब्बिही ज़हीरा, और है काफिर, काफिर यहाँ पे इस्म जिन्स के तौर पर आया है, इस्म जिन्स के मानी में इस्तेमाल हुआ है, और इससे मुराद वो मुशरिकीन है जिनका ऊपर से जिक्र चला आ रहा है। شرک اپنی حقیقت کے اعتبار سے اصل میں کفر ہی ہے نا، جو شرک کرتا ہے دراصل وہ کفر کرتا ہے، ہے نا، اور ہے کافر علی ربہ، اپنے رب کے مقابلے میں. یہاں پہ جو علی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو علی کے معنی ہے مد مقابل، حریف، دشمن. اور یہ جو کافر ہیں، سارے کافر اس زمانے کے بھی اور آج کے زمانے کے بھی، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس بھی لحاظ سے وہ کفر کر رہے ہیں تو وہ مد مقابل ہیں. کیونکہ کہتے ہیں کافر کا لفظ اس جنس کے طور پر آیا ہے، علی کی پریپوزیشن جو ہے وہ یہاں پر مد مقابل حریف کے معنی میں آئی ہے، گویا کہ حریف کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ یہ کافر جو ہے وہ اپنے رب کا مد مقابل بن گیا ہے، ظہیرا، اور رب کے مقابلے میں کیا کر رہا ہے جو ہے وہ ظہیر زوئے ہارا. ویسے تو پیٹھ کو کہتے ہیں، بیک کو کہتے ہیں، تو جیسے بیک اپ کرنا، جیسے کسی کی کا مددگار بننا. تو کافر اپنے رب کے حقیقی مقابل میں کھڑا ہو گیا تو مد مقابل بن گیا ہے، ظہیراً مددگار بن گیا. کس کا؟ شیطان کا. ہر کفر کا ساتھ دیتا ہے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہوں کے راستے میں آگے ہی آگے جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے مکہ کے کافر جو تھے وہ شیطان کی جو تھی وہ عبادت تو نہیں کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے ہمیں پتہ ہے شیطان دشمن ہے، وہ کرتے تھے بتوں کی عبادت. تو بتوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے. تو کافر کیا کرتا ہے؟ اگر بتوں کی عبادت کرے گا تو اپنے رب کے خلاف گویا کہ وہ شیطان کی مدد کر رہا ہے. شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی پر جو ہے وہ اکساتا ہے. تو یہاں پر جس چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہیں متوجہ کر رہا ہے، اور تمہیں جو ہے وہ کائنات کے کمالات دیکھ کر جو ہے وہ اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دینا چاہیے. لیکن لوگ دن رات یہ تضاد دیکھتے ہیں، اور یہ ان کو سمجھ بھی آتا ہے کہ یہ تضاد میں دوسرے خداؤں کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی ان کا کام نہیں ہے، لیکن انسان پھر بھی جو ہے وہ شرک کرتا ہے اور اللہ کی بندگی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو گویا کہ یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ توحید پرست بن جاؤ، بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. اور پھر ایسی عجیب بات ہے کہ لوگ پھر بھی جو ہے وہ رب کی مخالفت لوگ کرتے ہیں اور ہر باغی کے مددگار بنے ہوئے ہیں. وکان الکافر علی ربہ، اور ہے کافر جو ہے وہ اپنے رب کے مد مقابل دشمن بن گیا ہے، ظہیرہ اور پشت پناہی کر رہا ہے. کس کی؟ کفر کی، باغی کی، ہر گناہ کرنے والے کی جو ہے وہ کافر ساتھ دیتا ہے. پھر فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اب یہاں پہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری انذار اور تبشیر کی ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کیا کرو؟ الا مبشرا. کہیں آتا ہے نذیرا وبشیرا، یہاں پہ مبشرا پہلے آ گیا. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو حق بات کو قبول کر لیں تو آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے، ہے نا، جنت کی خوشخبری اور اللہ کی رضا کی خوشخبری دے دیں. آپ اس فکر میں نہیں رہیں کہ کون اسلام قبول کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. اگر کوئی نہیں کرتا وہ نذیرا، تو ان کو جہنم سے ڈرائیے، اور ان کو جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیے، اور جو دین اسلام کو پسند کرتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دیجیے. تو آپ کا کام حق بات کو پہنچانا ہے. اگر لوگ قبول نہیں کرتے یا اس کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے قبول کیا کہ نہیں. آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ حق بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تم کو بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. زبردستی کوئی ایمان لائے इसके लिए नहीं भेजा कि आप डरा धमका कर लाठी से लोगों को मुसलमान बनाएं। अगर कोई ईमान ले आए तो जजा देना आपका काम नहीं है, बस खुशखबरी देना आपका काम है। इनकार कर दे तो सजा देना आपका काम नहीं है, बल्कि इनकार करने पर डराना आपका काम है। तो ये बड़ी अहम बात है। तो अहले मक्का लाख समझाने के बावजूद और लाख जतन करने के बावजूद मुसलमान नहीं हो रहे थे, तो रसूल अल्लाह को तसल्ली दी जा रही है कि आप फिक्र ना करें। और बाज़ औक़ात दुनिया में भी हमें भी बड़ी परेशानी होती है कि इतनी कोशिश करते हैं तो फलां सुनता नहीं, फलां समझता नहीं। बताने में, समझाने में, हक बात पहुंचाने में कमी नहीं करनी चाहिए, आगे मामला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके आपकी जो है वो नबूवत का एक अहम असूल जो है वो आपके सामने रखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि नबी जब काम करता है तो फिर उसका काम करते वक्त जो है वो मयार और अंदाज जो है वो क्या होता है। क्या कहा? कुल मैं असलकुम अलैहि मिन अजर। आप इनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांग रहा, कोई उजरत, कोई तनख्वाह, कोई मुआवजा मैं तुमसे नहीं मांग रहा, है ना। तो अब आप देखें कि अगर मैं आपको दावत दे रहा हूं, जैसे रसूल अल्लाह दावत देते थे अहले मक्का पसंद नहीं करते थे, तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा या तनख्वाह थोड़ी मांगी है कि अगर मैं ये काम जो है वो जो कर रहा हूं और अगर मैं उसको छोड़ दूं तो तुम अपनी तनख्वाह बंद कर दोगे, है ना। तो असल बात क्या है कि मेरा तुमसे कोई मुतालबा तो है नहीं है। क्या है? कुल मा असलकुम अलैहि मिन अजर। मैंने तुमसे कोई तनख्वाह, कोई मुआवजा तो मांगा ही नहीं है। और अगर तुम ये दावत को कबूल नहीं करोगे तो तुम मेरा ये मुआवजा बंद कर दोगे, तुम मुझसे नाराज हो जाओगे, तो तुम्हें ये काम पसंद है या नहीं? मैंने ये काम करना है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं है। इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ा इला रब्बिही सबीला। मेरी उजरत क्या है, मेरी तनख्वाह क्या है, मुझे क्या मुआवजा तुम लोगों से चाहिए? इल्ला मन शाअ, मगर ये कि जो चाहे अन यत्तखिज़ा के वो पकड़ ले, इख्तियार कर ले, इला रब्बी अपने रब की तरफ का रास्ता, सबीला हदायत। तो मतलब ये है कि मैं बिल्कुल बेलोस और बेगरज होकर तुम्हारी भलाई की खातिर तुम्हें सीधे रास्ते की दावत दे रहा हूं और मैं तुमसे कुछ लेता तो हूं नहीं। अब उल्टा तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, मुझे बुरा भला कहते हो, तुम मुझे तकलीफें देते हो, तुम्हें इतना ख्याल भी नहीं आता, कुछ तो गौर करो। कोई तनख्वाह नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई भला नहीं मेरा। अगर तुम में से कोई शख्स हदायत पर आ जाए, मैं यही समझूंगा कि यही मेरी मेहनत का मुआवजा है जो मुझे मिल गया, यानी तुम्हारा नसीहत कबूल कर लेना ही मेरा जो है ना मुआवजा है। ये बड़ी खूबसूरत बात है जो यहाँ पर सिखाई गई है, जो यहाँ पर बताई गई है कि अंबिया जो हैं उनका जो है वो अपनी कौम से दुनिया का कोई फायदा नहीं मांगते थे। उनका मकसद जो था वो लोगों को एक अल्लाह की बंदगी की तरफ लाना और हदायत के रास्ते की दावत देना, ये उनकी जिंदगी का जो था वो मकसद था। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि अंबिया की मेहनत का सिला जो है वो अल्लाह देगा। कुरान में जगह जगह मिलता है वमा अजरिया इल्लल्लाह, उन्होंने नारा ये लगाया कि हमारा अजर तो अल्लाह के जिम्मा है। सूरह सबा में आता है कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम इन अजरिया इल्ला अल्लाह, सूरह सबा आयत 47। तो यहाँ पे भी यही बात है कि आपने इनसे कोई उजरत और मुआवजा तो नहीं लेना, लेकिन असल बात क्या है कि बस लोग जो है वो दीन को कबूल कर लें। तो ये फिर हम सबको भी जो है वो यहाँ पे हम सबके अमल के लिए भी उसूल निकलता है। और अमल के लिए उसूल क्या निकला कि हम सब भी जो हैं वो जब भी अल्लाह के दीन का काम करें तो तनख्वाह या मुआवजा या इज्जत जो कुछ भी है हम अल्लाह ताला से मांगें कि अल्लाह ताला मैं जो कुछ भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो तेरी रजा के लिए कर रहा हूँ, तेरी रजा के लिए कर रही हूँ ताकि अल्लाह ताला तू उसको जो है वो कबूल कर ले, है ना। तो क्योंकि अहदीस में हमें ये बात मिलती है कि जो शख्स किसी को नेक कामों की हदायत करता है और वो इसके कहने के मुताबिक नेक अमल करे तो इसके नेक अमल का सवाब खुद करने वाले को भी पूरा पूरा मिलेगा और इतना ही सवाब हदायत करने वाले शख्स को भी मिलेगा। तो ये जो सवाब मिलना है ना, ये उसकी नेकी का जो है वो मुआवजा है, है ना। तो इससे जो है, जैसे बच्चे जो है, औलाद अपने बच्चों को क्या, बच्चे औलाद को वालदैन क्या कहते हैं कि तुम पढ़ो, तुम्हारा ही फायदा है। अगर बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, फिर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कंप्यूटर साइंस में जाता है या जिस भी फील्ड में जाता है, पढ़ लिख कर सोसाइटी में एक इज्जत वाला उसको ओहदा मिल जाता है, अच्छी जॉब मिल जाती है, तो वालदैन तो दुनिया में होते भी नहीं है, बस वो खुद ही जिल्लत से बच जाती है। औलाद का अपना ही फायदा होता है, तो वालदैन भी बेलौस होते हैं ना, और औलाद को बार बार समझाते हैं कि आज मेहनत करोगे कल तुम्हारे काम आएगी। बच्चे समझते नहीं है, लेकिन जब फिर दोबारा खुद बड़े होते हैं, वालदैन बनते हैं, फिर उनको अफसोस होता है कि हमने माँ बाप की बात जो थी वो क्यों ना माने। जैसे जो है वो बाज माएं अपनी बेटियों को कामों की आदत नहीं डालती, बेटों को काम की आदत ही नहीं डालती। अब जो है वो शादी हो जाती है, फिर बेटी जाके रोती है, बड़ी मुश्किल होती है, सीख तो जाती है कुछ अरसा गुजरने पर, लेकिन बड़े मसाइल में से उसको गुजरना पड़ता है। तो वो माएं जो बच्चों को सिखाती हैं, बेटियों बेटों को, और बच्चे सीख जाते हैं, उस वक्त बच्चों को भारी लगता है, लेकिन कल को अपनी अमली जिंदगी में उनको बहुत फायदा होता है कि अच्छा हुआ मैंने ये रोड टेस्ट पास कर लिया और मुझे गाड़ी का लाइसेंस मिल गया, अब मुझे फायदा हो रहा है आने जाने चलाने में, अच्छा हुआ मैंने रोटी सीख ली थी पकानी, अब मैं जो है वो रोटी बनाती हूँ तो फायदा हो गया। जैसे एक लड़की की शादी हुई, वो डॉक्टर है, और जो है वो उसके पास मिलने जुलने का जब उससे इत्तफाक हुआ तो कह रहे लगी कि घर में नौकर चाकर थे और मैं पढ़ती थी तो काम ही नहीं किया, हत्ता कि अंडा फ्राई तक नहीं किया। तो कहती थी कि शुरू में अंडा फ्राई करना ही मेरे लिए जान जोखों का काम था, आटा गूंदना नहीं आता था, समझ नहीं आती थी आटा कैसे गूंदना है। तो लेकिन कहती है अपनी बेटी को मैंने सब चीजें शुरू में जल्दी सिखा देनी है। तो असल में क्या है कि ये मुआवजा क्या है कि औलाद का भी अपना ही फायदा है और वालदैन को अच्छा लगता है कि औलाद सुख में रहे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबसे प्यार करते हैं और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम नेक बन जाएं। तो इल्ला मन शा यत्तखिज़ इला रब्बी सबीला, तो जो अल्लाह के रास्ते पर चलेगा तो ये सिराते मुस्तकीम उसको जन्नत में पहुंचा देगा। अपना ही फायदा है ना हम सबका। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन मुसलमान बनाए, नेकियों में आगे बढ़ाए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।